તારીખ 25/11/1997 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 72.
શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક, 7મા અધિકાર,
207 પાનું, ગુજરાતીમાં.
નિશ્ચયાભાસી જૈની નિશ્ચયાભાસી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા નિરૂપણ ચડતા હૈ. કહાં સે લેના હૈ સુનના હૈ પદ્મનંદી 25 મારે 201 પાને બરાબર क्या प्रश्न उठाया उन्होंने कि शास्त्र में उपयोग लगाना उसका निषेध पद्मनंदी 25 शास्त्र में तो लिखा है और आप कहते हैं कि आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए, न्याय शास्त्र आदि का भी अभ्यास करना चाहिए. इस प्रकार से ઉત્તર દેતે હૈં કે યહ સત્ય કહા હૈ, બુદ્ધિ તો આત્મા કી હૈ, ઉસે છોડકર પરદ્રવ્ય યાને શાસ્ત્રો મેં અનુરાગીની હુઈ ઉસે વ્યભિચારીણી હી કહા જાતા હૈ. તો બાત સહી કહા હૈ, શાસ્ત્ર મેં જો બાત લખી હૈ વો કોઈ બાત વિપરીત લખી નહીં હૈ, સહી લખી હૈ. लेकिन किस भूमिका वाले जीव के लिए लिखी है वो बात अच्छी तरह समझनी चाहिए. हमारी भूमिका नहीं हो पर हम लगा देने अपने में तो ये शास्त्र की बात भी विपरीत, हमारे लिए विपरीत हो जाएगी. तो अगर आत्मा में उपयोग लगता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो शास्त्र में उपयोग लगाने का उपदेश नहीं देते हैं. लेकिन आत्मा को मैं उपयोग नहीं लगता है और विषय कषाय में उपयोग जाता है, ऐसी स्थिति होती है, ऐसी योग्यता होती है, उनके लिए तो शास्त्र पढ़ना चाहिए. अभिप्राय में ऐसा रखना है કે ઉપયોગ તો આત્મા મેં ભી લગાના હૈ, શાસ્ત્ર ભી ઇસલિયે પઢના હૈ કે ઉસમેં આત્મા મેં ઉપયોગ લગાને કા ઉપદેશ હૈ. ઇસલિયે ક્યું શાસ્ત્ર પઢના હૈ કે આત્મા મેં ઉપયોગ લગાને કા ઉપદેશ વાલે યે શાસ્ત્ર હૈ. તો એસા ઉપદેશ સુનકર ઉસ ઉપદેશ કો અંગીકાર કરકે उपयोग आत्मा में लगावे. तो नहीं पढ़ना है तो भी उपयोग आत्मा में लगाना है, पढ़ना है तो भी उपयोग आत्मा में लगाना है. प्रवृत्ति विभिन्न प्रकार की है, आशय एक ही प्रकार का है, आशय में फर्क नहीं होता.
सुवर्णी जी कहते नहीं सुनना, सुनने के लिए नहीं सुनना.
हाँ, ऐसा ही बात है, दृष्टांत दिया है. परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है और न रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी. उसी प्रकार बुद्धि आत्मस्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य ही है और न रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्र आदि परद्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषयादि में लगे तो महानिंदनीय ही होती है. प्रकार बाहर निकलने से उपयोग का दो प्रकार हो जाएगा, प्रशस्त और अप्रशस्त। या तो सत्संग शास्त्र स्वाध्याय में उपयोग लगाओ या तो आत्मा में लगाओ, लेकिन विषय कषाय में तो लगाना योग्य नहीं है। सो मुनियों कोई भी स्वरूप में बहुत काल वृद्धि नहीं रहती तो तेरी कैसे रहा करे। मुनि भी शास्त्र अध्ययन करते हैं क्योंकि उसका भी योग्यता है कि बहुत काल तक स्वरूप स्थिरता नहीं रहती। अगर अंतर्मूर्त की भी स्थिरता रह जाए तो केवल ज्ञान की भी हो जाए, फिर तो शास्त्र पढ़ने का सवाल नहीं रहता। इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। जहां तक उपयोग बाहर जाता है तो बाहर कहाँ जाए इसका विवेक करना चाहिए। अभिप्राय तो वो रखना चाहिए कि उपयोग आत्मा में ही लगाना है, अभिप्राय शास्त्र पढ़ने का नहीं हुए। इसलिए वो अभिप्राय का अपना सारा जो लेख है उसमें वो बात लिया है कि अभिप्राय तो आत्मा में लगाना का ही हुए, अभिप्राय में तो कोई शुभ कार्य करने का नहीं हुए। फिर भी अपनी स्थिति देख करके, योग्यता देख करके विवेक करना चाहिए।
यात्रा करिए
बोलो। हाँ, वो आत्मा में जाने के लिए करना चाहिए, करने के खातिर करना वो बात नहीं होनी चाहिए। आत्मा में हम कैसे जा सके, उसी लक्ष्य रख करके उसी को अनुसरण करने के लिए वो बाह्य निमित्त है। अगर वो ऐसा अनुसरण करने का लक्ष्य नहीं रहा तो वो बाह्य निमित्त भी नहीं है, फिर ये खाली क्रिया का खोखा हो गया। तथा यदि द्रव्यादि के और गुणस्थानादि के विचार को विकल्प ठहराता है, आगे दो दलील दिया ने कि ये तत्वज्ञान का अभ्यास तो सब विकल्प ही विकल्प है। सो विकल्प तो है, उसकी मना तो है, विचार करेंगे उसमें विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे। जब योग्यता विकल्प दशा की है तो या तो द्रव्य का या गुणस्थान का विकल्प करो या तो संसार का विकल्प करो, कोई न कोई तो विकल्प हुआ ही होगा। वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं, और जो अन्य विकल्प होंगे वो तो बहुत रागादि गर्भित, राग का तीव्र रस उसमें आ जाएगा, तीव्र राग हो जाएगा। और जो द्रव्यादि का विचार है उसमें तो राग का निषेध वाली बात आएगी, विकल्प में भी राग का निषेध करने की बात आएगी, दूसरा विषय में ऐसी बात आएगी नहीं। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मूर्त रहता है। निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं और छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मूर्त, जगन्य अंतर्मूर्त में तो वो पलटता है। पलट करके कहां ले जाना, उसका विवेक करना चाहिए। तथा तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूप का ही चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा, मैं तो आत्मा का चिंतन करूंगा, मैं गुणस्थान का विचार नहीं करूंगा, करणानुयोग का विचार नहीं करूंगा, मैं तो आत्मा का विचार चिंतन करूंगा। सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है। जो द्रव्य सामान्य है वो द्रव्य सामान्य का तो अनेक प्रकार कहाँ होगा, वो तो सामान्य मैंने एक रूप है, द्रव्य तो एक रूप है, उसका अनेक प्रकार का चिंतन तू कैसे करेगा। और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मार्गणा शुद्ध शुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा। आत्मा का सामान्य का चिंतन में तो एक रूपता है, और उसी आत्मा का विशेष रूप चिंतन करेगा तो उसमें का उसका अनेक पहलू है, उसका द्रव्य गुण पर्याय गुण में अनेक गुण है। जैसे मैं शुद्ध हूँ तो परिपूर्ण शुद्ध हूँ, आनंद स्वरूप हूँ तो आनंद दूसरा गुण लिया, प्रत्यक्ष हूँ तो तीसरा गुण लिया, अनंत सुख धाम हूँ तो चौथा गुण लिया। तो ये सब विशेष बात होगी, सामान्य नहीं रही। आत्मा में और आत्मा में ये अनेक प्रकार से चिंतन करना
विशेष बात हो,
वो बात विशेष का चिंतन हो गया। विशेष का चिंतन करना है या सामान्य का चिंतन करना है, कैसा करना है तुझे? तो उसमें तो विचार होगा होगा और होगा, विशेष चिंतन करने से विचार विकल्प हो जाएगा। तो कहता है कि मारे तो विकल्प नहीं करना है, लेकिन इसमें भी विकल्प होता है, विकल्प तो सामान्य रहा, कहाँ फर्क पड़ा? और सुन कि केवल आत्मज्ञान ही इसे तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। क्या कहते हैं? आत्मा का तो अनुभव हो गया और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये तो केवल ज्ञान हो गया क्या? साधक को भी नहीं होता है। केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं, सात तत्वों का आत्मज्ञान ही आत्मा की जानकारी यहाँ लेना। केवल आत्मा की जानकारी कर लिया कि आत्मा में अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, हो गया आत्मा का ज्ञान। ऐसा तो कोई नहीं। सात तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। देखो नास्तिक का पक्ष लिया है इधर, क्यों ऐसा कहते हैं कि कहीं लोग शास्त्र पढ़ करके ऐसा लेता है कि हम तो अकेले इस अस्थि का विचार करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा, रागादिक का अभाव होने से मोक्ष मार्ग होगा। तो राग रहित आत्म स्वरूप का चिंतन करता है तो साथ में रागादिक का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? और तू उसको उसको देखता है या नहीं देखता है कि राग वैसा का वैसा रहे? हम तो आत्मा का शुद्ध 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 का चिंतन करते हैं, नायक का चिंतन करते हैं, ऐसा चलता नहीं है। सो सात तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रय बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य है। जीव अजीव की विशेष अवस्थाओं का भी ज्ञान करना चाहिए और आश्रय बंध वो भी जीव अजीव की विशेष अवस्था है उसका भी अवश्य ज्ञान करना चाहिए, जिनसे सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। खास करके मनुष्य पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान तो करना चाहिए। तत्व दृष्टि से कौन से तत्व हे है, कौन से तत्व उपाधि है, उसको अवश्य जानना चाहिए। ऐसे जाने बिना एकला आत्मा का हम चिंतन करते हैं तो ऐसा तो कोई काम होने वाला नहीं है। वो एक दफे प्रश्न चला था पूज्य बैंस के समक्ष में, मुख्य ने पूछा कि हम भेद ज्ञान करते हैं तो उसमें अकेला का अभेद ज्ञान करे तो क्या? मैं राग से भिन्न हूं, मैं देह से भिन्न हूं, ऐसा हमको लेना ही नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूं, ज्ञायक में अभेदता का ही हम तो ज्ञान करे तो क्या हमारे कार्य पद्धति ठीक है? बोला कि नहीं, वो ठीक नहीं है। क्या बोला?
ठीक नहीं है
कि तुम राग में खड़े हो, देहात्म बुद्धि में खड़े हो, उसका निषेध हुए बिना, नास्ति हुए बिना अस्ति आएगी कहां से? हमको नहीं करना है। क्या बोले वो? हमको ऐसा नहीं करना है, हमको तो ज्ञायक में पहुंचना है। तो एक ज्ञायक का जोर लगा ले हम, किसमें जोर लगाएगा? विकल्प का जोर आएगा और विकल्प का तो निषेध करने का है। तो बीच में वो नास्तिक का निषेध आए बिना नहीं रहता। क्या बोले? उत्तर में वो बोले थे तो बीच में आए बिना नहीं रहता। तुम कल्पना में हवा में चलते हो, ऐसा चला जाता नहीं है। पांव तो जमीन पर रखेंगे तो चला जाएगा, हवा में ऐसे चला जाता नहीं है। और वहां पश्चात रागादि को दूर करना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुए बाद भाव करना। सो जो रागादि बढ़ाने के कारण है, सो जो रागादि बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो रागादि घटाने के कारण हो वहां उपयोग को लगाना, उसका विवेक करना। जिससे राग बढ़ता हो उसको छोड़ देना, जिससे राग घटता हो वहां उपयोग लगाना। जैसे शास्त्र में राग का निषेध है तो राग घटाने का वो निमित्त है, देवगुरु शास्त्र राग घटाने का निमित्त है, क्योंकि ये वितरागी है, वो राग बढ़ाने को कभी उपदेश देते नहीं है। तो उपयोग वहां लगाना। सो द्रव्यादिक और गुणस्थान आदि के विचार रागादिक घटाने के कारण है। जो तत्वज्ञान का अभ्यास है उसका हेतु तो रागादिक घटाने का है, इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है, राग बढ़ाने का कोई निमित्त नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं आएगी सिद्धांत में कि तुम राग को बढ़ाओ, राग होवे तुमको कोई हरकत नहीं है, भले ही राग होवे, ऐसी बात है
नहीं।
वो देवगुरु शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मेरा राग भी तिरजे करना नहीं है, ये वितरागी है।
छोड़ने के लिए कहते हैं उस बारे में, आपको छोड़ने के लिए
बढ़ाने, छोड़ने के लिए बोलेंगे, वो बढ़ाने के लिए कहेंगे नहीं,
कभी नहीं कहेंगे,
ऐसी बात है। ऐसा प्रश्न चला था, ऐसा एक स्थूल प्रश्न चला था, किसी अन्य जो है संप्रदाय वाले उसने पूछा कि आप स्वामगढ़ जाते हो तो आपके गुरु तो निमित को नहीं मानते हैं, फिर आप निमित के पास क्यों जाते हो, वो निमित है कौन है? स्वामगढ़ जाते हो तो निमित है स्वामी जी, आप तो निमित को नहीं मानते, उड़ाते हैं, फिर काय को वहां जाते हो? तो बोले कि वहां ऐसा सुनने के लिए जाते हैं कि निमित कुछ करता
नहीं है,
नहीं है, वही सुनने के लिए जाते हैं। वैसा ही सुनाते हैं, वो सुनने के लिए जाते हैं। फिर वो कहता है और उसका दलील दी, आर्गुमेंट, कि रागादि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों का गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्ता आदि के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि का जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है? क्या दलील दिया? निश्चयाभासी है ना, कि ठीक है रागादिक मिटाने का जो कारण है देवगुरु शास्त्र उसमें तो उपयोग लगाए, या द्रव्यानुयोग में अध्यात्म में उपयोग लगाए, लेकिन कर्णानुयोग में क्यों लगाए? ये सब कर्णानुयोग का विषय है। त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, ये गति कौन कैसे परिणाम से कैसी गति, मनुष्य गति सरलता से होती है, मायाचार से त्रिंज गति होती है, इसकी बात क्यों करते हो? और कर्म का बंध कैसा होता है, किस किस प्रकार का होता है, उदय आता है तो किस प्रकार से आता है, उसमें सत्ता रहने का मैंने जो स्थिति बंद है वो कैसा स्थिति होती है, ये सब की क्या जरूरत है? और 14 ब्रह्मांड में क्या क्या कर्म का भोगने का स्थान है, कर्म फल भोगने का, इसकी भी क्या जरूरत है? उसका विचार क्यों करें हम? वो कोई कार्यकारी हमको तो नहीं लगता है, वो उसका दलील है। ऐसा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते हैं नहीं है, ये करना राग का अभाव करने के लिए लिखा गया है। क्या चारों अनुयोग किस लिए लिखा? राग का अभाव करने के लिए लिखा। सभी शास्त्रों का तात्पर्य का क्या है कि वितरागता। गुरुदेव कहते थे शास्त्र तात्पर्य वितरागता, सूत्र तात्पर्य भी वितरागता, और एक में एक भी शब्द वचन है उसका तात्पर्य क्या है वितरागता। तो इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है, क्योंकि वे नहीं इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं, इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है। क्या है, किस तरह से वो करणानुयोग पढ़ना चाहिए कि इसमें भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि करनी नहीं है, तो रागादिक को नहीं बढ़ाएगा। या तो उस प्रकार के चारों अनुयोग का अभ्यास करते वक्त मुमुक्षु जीव को मेरा रागादि का अभाव कैसे हो, यही लक्ष्य से अभ्यास करें। अपना जो अभिप्राय है, अपना जो हेतु है, ध्येय है, उसी को लक्ष्य में रखकर चारों अनुयोग का अभ्यास करें तो कोई आपत्ति नहीं है। तथा इनको विशेष जानने से तत्वज्ञान निर्मल हो, क्या है कि दर्शनों की मंदता होती है तो तत्वज्ञान निर्मल होता है, इसलिए आगामी रागादि घटाने का ही कारण है, इसलिए वो तत्वज्ञान का अभ्यास रागादि मिटाने का कारण है, इसलिए कार्यकारी है, हेतु सहित होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बहुत जानकारी करने के लिए, अपना ज्ञान दिखाने के लिए या दूसरों को उपदेश देने के लिए जो शास्त्र पढ़ता है वो शास्त्र पढ़ना उसके लिए यथार्थ नहीं है, अपना रागादि घटाने के लिए शास्त्र पढ़ना ऐसी बात है। जो अपने लिए शास्त्र स्वाध्याय भक्ति जो कोई भी क्रिया पूजा भक्ति शास्त्र स्वाध्याय दया दान कुछ भी है, वो अपने आत्महित को लक्ष्य में लेकर के नहीं करता है, वो वास्तव में सही यथार्थ रूप से ये प्रवृत्ति नहीं करता है। फिर ये बात हो जाती है लोक संज्ञा वाली या व्यापार वाली हो जाती है कि दूसरे के लिए, दूसरों के लिए ये करना है, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, मान कषाय बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें। फिर वो कहता है और दल्ली कि स्वर्ग नरक आदि को जाने वहां तो राग द्वेष होता है, स्वर्ग में इतना इतना अनुकूलताएं हैं, नरक में इतनी इतनी प्रतिकूलताएं, अनुकूलता का अभिलाष हो जाएगा, प्रतिकूलता नहीं हो ऐसा द्वेष हो जाएगा, तो इसका अभ्यास तो नहीं करे, नहीं करना चाहिए। समाधान देते हैं कि ज्ञानी को तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी को होती है अवश्य। क्या
होती है
ऐसी बुद्धि? अज्ञानी को होती है। अब तू शास्त्र का अध्ययन करता है वो अज्ञानी रहने के लिए या ज्ञानी होने के लिए?
होने के लिए
क्यों करता है? ज्ञानी होने के लिए करना है, तो ज्ञानी की दृष्टि से उसका अध्ययन करना। ज्ञानी की तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, ज्ञानी कभी ऐसा नहीं चाहता कि मैं तो स्वर्ग में रह रहे करके मोक्ष में जाऊं, मेरे तो जितने भी भव हो वो स्वर्ग के ही बने मोक्ष में जाने के पहले, ऐसा क्या ज्ञानी चाहता है? कैसा ज्ञानी चाहता नहीं है। अगर चाहता है तो वो ज्ञानी नहीं है, ऐसी बात है। ज्ञानी तो ऐसा विचार करेगा कि तीन लोक में पूर्व कर्म अनुसार कहीं भी मैं हूं, मुझे तो आत्मा में ही रहना है, और कहीं रहना मेरा होता ही नहीं है। ऐसी बात है। कहीं भी हो तीन लोक में, मेरा क्षेत्र तो मेरा असंख्य आत्म प्रदेश है, बाहर का कोई क्षेत्र मेरा नहीं है, इसलिए कोई क्षेत्र से मुझे राग द्वेष ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है ऐसी बुद्धि ज्ञानी को होती नहीं है।
निश्चय नाल भाई कहीं आए गए नहीं,
आए गए नहीं, आते जाते भी नहीं।
लक्ष्मण जी ने
छह महीना अच्छा
आत्मा में है, वो कोई नरक में सम्यक दृष्टि होता नहीं, स्वर्ग में भी सम्यक दृष्टि होता नहीं, सम्यक दृष्टि तो अपने आत्मा में ही रहता है। ऐसी बात है।
आप तो कह रहे कुछ थोड़ी देर के लिए रहता आत्मा में, अंतर मूलक तो बाहर आता है, थोड़ी देर के लिए तो आत्मा में रहता है, थोड़ी देर तो बाहर आ जाता है।
नहीं, निरंतर आत्मा में रहता है, परिणति चालू रहती है, आत्मज्ञान की परिणति चालू रहती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत गुण की परिणति चालू है। बाहर उपयोग जाता है वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है, वो आत्मा ही नहीं है। ऐसी बात है।
हाँ,
लिखा है कृपालु देव ने, वो बात लिखा है कि सातवीं तम तम प्रभा पृथ्वी और रौरव नरक मुझे सम्मत है, लेकिन मिथ्यात की मोहनी मुझे हरगिज सम्मत नहीं है। क्या लिखा है? सातवें नरक के तमतम प्रभा नाम की पृथ्वी है, बहुत खराब, उनको ऐसा वैसी बात नहीं है। और रौरव नरक मिथ्यात मोहनी में अनंता सातवें नरक पड़ा है, मिथ्यात के गर्भ में अनंता सातवें नरक और अनंत काल निगोद का पड़ा है, वर्गीय सम्मत नहीं करता मैं। एक दफे सातवें में जाना हो तो ठीक है, लेकिन मिथ्या छोड़ के, मिथ्या रख करके कहीं भी स्वर्ग में भी जाना नहीं है।
गंभीर बात है,
बहुत गंभीर बात है। ऐसा सम्यक का मूल्य नहीं आवे तो पुरुषार्थ उठेगा नहीं, अनुकूलता में रुक जाएगा। मेरे तो उतने अनुकूलता चाहिए, उतने अनुकूलता हो तो काम होगा, वरना मेरा विकल्प बढ़ जाएगा कि तू पुरुषार्थ करने के लायक नहीं है। सुबह थोड़ा कर ले, बाकी कोई पुरुषार्थ आत्मा का पुरुषार्थ होने वाला नहीं है। ये मूल्य दिखाया है, सम्यक दर्शन का मूल्य दिखाया है, इतनी बात है। ऐसा बलवान परिणाम है, आत्मबल बहुत बलवान है, अनंत बल है उसमें, यही दिखाना है कि सातवीं नारकी की वेदना का दुख नहीं है, अंतर सुख रस जागृति। बाहिर नारक के कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटागटी। गया कि नहीं गया? चिन्ह मूर्ति दृगधारी की मुही रीति लगी है अटापटी। ऐसा है, दृगधारी मैंने जिसकी दृष्टि ने धारण किया, चिन्ह मूर्ति की दृष्टि धारण किया, उसकी रीत कोई अटपटी होती है, उसको पहचानना वो कोई आसान नहीं है। अगर पहचान लिया तो तेरा भी छुटकारा हो जाएगा। ऐसी बात है। होने वाले का, सम्यक दृष्टि होने वाले का तो छुटकारा हो ही जाएगा, लेकिन पहचानने वाला का भी छुटकारा हो जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि की बात आती है शास्त्र में। कसाई का तीव्र रस नहीं होता है, उतनी बात है। फिर वो कहता है, बार बार दलील देता है कि शास्त्र में तो ऐसा उपदेश है कि प्रयोजन बुद्ध थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। देखो पूरा दलील दिया है पंडित जी ने, निश्चयाभाषी जितना दलील दे सके उतना दलील दिया है। तो प्रयोजन भूत कार्य करता है तो वो तो बात ठीक है, नहीं करता है तो तुमको बताते हैं कि कहां तेरी भूल रह गई है। उत्तर किसके लिए वो बात है, प्रयोजन भूत की बात और अप्रयोजन भूत की बात किसके लिए है, कि जो जीव शास्त्र पढ़ करके अन्य बातें तो बहुत जानते हैं और प्रयोजन भूत को नहीं जानते हैं। प्रयोजन भूत को जो छोड़ देते हैं और अकेला अप्रयोजन भूत बातों में जिसको रस आता है उसको कहता है कि तू प्रयोजन भी थोड़ा जान तो भी बहुत है।
हाँ।
इतना तो अप्रयोजन भूत में उपयोग लगाता है, माथा लगाता है, तो थोड़ा भी प्रयोजन भूत जान तो तेरे लिए अच्छा है। लेकिन जो प्रयोजन जान भूत जानता है, प्रयोजन को साधता है, उनके लिए वो बात नुकसान की। उनको तो हर बात जो है वो अपने प्रयोजन में वो जोड़ देते हैं, हर बात को वो अपने प्रयोजन में लागू कर देते हैं। जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और जो प्रयोजन को नहीं जानते हैं, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है, बहुत कम क्षोभ हो, ज्यादा जानने का उघाड़ी नहीं हो जिसको, उनने यह उपदेश दिया है। देखो मैंने रोगी देख करके दवाई दिया है, ये दवाई सबको लागू होती नहीं है। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा, जिसकी उघाड़ शक्ति है, ज्ञान का क्षोभ है, उनको उनके लिए नहीं कहा। जिनको वीर्य का क्षोभ है इसके लिए व्रतादि का धारण करने का भी मना नहीं किया, भले मिथ्या अवस्था हो व्रतादि धारण करने तो उसका अशुभ तो घटेगा कम से कम, तीव्र रस तो नहीं जाएगा उद्गल में, ऐसा लिया है तो उनके लिए तो नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा। वो तो जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजन भूत जानना निर्मल होगा, निर्मल भी होगा और दृढ़ भी होगा। उनको ये फायदा होगा कि उनको तो शास्त्र का अभ्यास करने से निर्मलता बढ़ेगी, दृढ़ता भी बढ़ेगी, ये बात होगा उनको तो।
बहुत जानना लेकिन प्रयोजन भी जानना।
वो क्या कि जितना भी बहुत जानता है वो अपने प्रयोजन के साथ जोड़ देता है, प्रयोजन का लक्ष्य नहीं छूटा होने से और प्रयोजन का लक्ष्य चालू रहने से हर बात में वो प्रयोजन को लगाएगा तो उसका तो प्रयोजन ही मजबूत होगा और उससे निर्मलता भी होगी। तो पंडित जी साहब ने वो बात कहा कि शास्त्र स्वाध्याय कैसे करना, शास्त्र स्वाध्याय की यथार्थ पद्धति क्या है। जो लोग प्रयोजन छोड़ करके बहुत जानकारी करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उनके लिए तो तकलीफ हो जाएगी, वो तो गड़बड़ में आ ही जाएगा, उसको तो नुकसान होगा होगा और होगा ही। लेकिन जिसको रागादिक मिटाने का अभिप्राय है और वही लक्ष्य से वो करता है, कोई भी बात आती है तो मेरा राग द्वेष घटने में मोह घटने में वो कैसे लागू होती है, ऐसा अंतर में जिसका मंथन चलता है उसको कोई बात नुकसानकारक होती नहीं है। वरना तो निश्चय की बात भी उसको नुकसानकारक होगी कि जैसे कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता इसलिए मुझे सत्संग में भी नहीं जाना है, क्यों कि ये भी एक संयोग है, संयोग से लाभ होता नहीं, अन्य द्रव्य से कुछ लाभ होता नहीं, हमने ऐसा सुना है, पढ़ा है, माना है, ये भी उनको नुकसान का कारण हो जाएगा। वो प्रश्न चला था कलकत्ता में, वो सत्पुरुष की बात जो आती है बार बार, तो ये तो निमित्ताधीन दृष्टि हो जाएगी, ऐसा निमित्ताधीन दृष्टि हम क्यों करें, ये प्रश्न चला था, दो दफे चला था। बोला कि आप अपने जीवन में अभी एक भी पर्याय बिना निमित्त करते हो तो बता दीजिए। सुबह से रात तक आप जितनी भी प्रवृत्ति करते हो उसमें एक भी पर्याय तो दिखाओ कि बिना निमित्त के आधार तुम्हारा परिणाम पर्याय होता है, ऐसा बताओ। जब सारे दिन लगातार निमित्ताधीन परिणमन करते ही रहते हो तो वहां ये तर्क क्यों नहीं उठाते तुम? पर जो सत्पुरुष तुमको दृढ़ दृष्टि कराने के लिए उपदेश देने वाला है, इसके लिए तुम निषेध करने के लिए यही कुतर्क उठाते हो। ये तर्क नहीं है किंतु कुतर्क है, ऐसी बात है।
अपने अंदर झांककर देखते नहीं है
एक दफे तो ये पाटनी जी ने प्रश्न किया था निमित्ताधीन दृष्टि का, बताइए सारे दिन में आपकी कौन सी चर्या है बिना निमित्त आपकी एक भी पर्याय होती हो तो हमको बता दो। वहां आपको ये विकल्प आता है, ये तर्क उठता है कि नहीं उठता है, ये भी बता दो, फिर मौन रहिए। तो इधर जिस सत्संग से, जिस सत्पुरुष का योग से दृढ़ दृष्टि होने की संभावना है, प्रत्यक्ष योग बिना न किसी को कभी दृढ़ दृष्टि हुआ है, अरे देशना लब्धि भी नहीं हुई है। दृढ़ दृष्टि की बात तो खैर बात दूर की है, देशना लब्धि भी नहीं मिल सकती। चार लब्धि में से एक लब्धि है वो भी नहीं आती है, सूक्ष्म लब्धि, प्रायोग लब्धि, देशना लब्धि, ऐसे लब्धि चार लब्धि आते हैं। फिर योग्यता का विषय है मुमुक्षु के, फिर सम्यक दर्शन होता है। जब ये चार लब्धि में से एक लब्धि भी नहीं आती तो सम्यक दर्शन तो होने के सवाल ही नहीं है। वो तीन काल में ये अबाधित सिद्धांत है कि सजीवन मूर्ति के प्रत्यक्ष उपदेश बिना किसी को देशना लब्धि भी होती नहीं है। आएगा इधर पांच लब्धि का विषय आएगा, इसी प्रकरण में आएगा, सातवां अधिकार में ही आएगा, लेंगे उस वक्त सम्मान। तो वहां ये बात लगानी नहीं है। बोलिया है कृपाल देव ने, योग्यता बताने की बात है कि जैसे जब जीव की योग्यता ही ऐसी है कि जैसा जैसा निमित्त आता है उदय में वैसा वैसा उनका परिणमन हो जाता है, ऐसा उपादान इसका ऐसा है, तो उसको निमित्त का भी विवेक करना चाहिए क्योंकि उसकी उपादान की योग्यता ऐसी है। अनुकूलता आती है तो उनको सुहाता है, प्रतिकूलता आती है तो उसको नहीं सुहाता है। जब ऐसी योग्यता है तो फिर किस निमित्त का संग में रहना इसका विवेक करना चाहिए, जिससे वो निमित्ताधीन दृष्टि पूरी मिट जाए और द्रव दृष्टि हो जाए। और संग तत्व की दृष्टि करने के लिए सत्संग अनिवार्य है। क्या? सत्संग अनिवार्य है। सीधी किसी को असंग तत्व की दृष्टि हो जाए ऐसा कभी बनता नहीं है। हाँ, तो गुरुदेव ने 827 नंबर का बोल लिया है परमागम सार में कि निमित्त का विवेक है वो आत्मा का विवेक है। क्या क्या बोले? निमित्त का विवेक ये आत्मा का विवेक है। जो ऐसा नहीं जानता वो निश्चय में भुला हुआ है और व्यवहार में भी भुला हुआ है, ऐसा लिखा है। हाँ, जीत जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजन भूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि सामान्य शास्त्रतः नूनम विशेषो बलवान भवेत। ये भी शास्त्र वचन है, और शास्त्र में परस्पर विरुद्ध वचन आएगा, तू कौन दोनों को लेगा वो भी संभव नहीं है, एकांत करेगा वो भी ठीक नहीं है। तो जहाँ जहाँ जो योग्य है वहाँ उसको लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है इस संस्कृत सूत्र का कि सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है, सामान्य शास्त्र ज्ञान से शास्त्र का विशेष ज्ञान होता है, वो बलवान होता है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है चारों पड़खों से, इसलिए विशेष जानना योग्य है। जिसको जितना सूक्ष्म हो उतना उसको उसका सदुपयोग करना चाहिए।
और जिसको विशेष तो सामान्य की जानकारी नहीं हो विशेष को चला जाए, तो जिसको सामान्य की तो जानकारी नहीं हो विशेष को चला जाए
नहीं, उसको क्या है कि सामान्य जानकारी करके अगर सूक्ष्म हो तो विशेष भी जानकारी करना इसके लिए योग्य है, क्योंकि उसका परिणाम में दृढ़ता बलवान निर्णय होगा। इसमें क्या निर्णय उसका विशेष बलवान अच्छा निर्णय होगा, मतलब बलवान होगा, दृढ़ता आएगी ज्ञान में।
मेरा कहना ये है जैसे हमें सामान्य की तो जानकारी है नहीं, विशेष में जोर लगाए तो समझ में आएगा
नहीं, सामान्य में जानकारी करके ये बात है, प्रयोजन भूत करके आगे इस प्रयोजन भूत को दृढ़ करने के लिए समय और शक्ति है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए।
पहले सामान्य
सामान्य पहले जो होता है वो तो सामान्य ही होता है, मोटी मोटी बात है वो सामान्य है, फिर उसका भेद प्रभेद में जाता है वो विशेष है। ऐसा तथा वह तपस्वरण को वृथा क्लेश ठहराता है। अब इसकी सब दलील का उत्तर दिया है, आगे जो इतनी जितनी दलील दिया ने उसका सब का उत्तर दिया है। वह तपस्वरण को वृथा क्लेश ठहराता है, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। संसारी जीव है वो विषय कषाय में मग्न रहते हैं, तो मोक्ष मार्गी अगर विषय कषाय में मग्न रहे तो क्या अंतर हुआ दोनों में, फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं हुआ। सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। आता है अपने जिनवाणी की स्तुति में कि जब ज्ञान ज्योति जागी अंतर में तो क्या रुचि हुई कि रुचि बाड़ी पुनः शमदम की, महिमा है अगम जिनागम की। आता है जैसे ज्ञान ज्योति जिसको प्रकट हुई सम्यक ज्ञान की, उसकी रुचि शमदम की होगी, व्रतादि की रुचि उसे आए बिना रहेगी नहीं, ये इसका लक्षण है ज्ञान ज्योति का। क्योंकि जिसने भीतर में असंग तत्व को जाना या अनुभव किया वो तीव्र पाप के परिणाम में जाना चाहता नहीं है, तो उसको छोड़ने के लिए समदम की वृत्ति उसको आए बिना रहेगी नहीं, इसका लक्षण है। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इससे राग द्वेष नहीं होना चाहिए। संसारियों को तो इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष तो होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों, इसके मतलब मोक्ष मार्गी को तो राग द्वेष नहीं होना चाहिए, तो राग द्वेष का निमित्त भी छोड़ने का परिणाम उसको आए बिना रहेगा नहीं, रहने वाला नहीं, आएगा ही आएगा। वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है कौन, मोक्ष मार्गी। क्यों वो उपवास करता है, राग छोड़ने के अर्थ त्याग क्यों करता है, अपना राग मिटाने के कारण। ऐसा नहीं है कि फिर उपवास किया और पालना में बहुत राग करे, ऐसी बात होती ही नहीं है। वो सही उपास तो ऐसा लिया है शास्त्र में, वो तो क्या है कि जो नहीं पढ़ा है शास्त्र और नकल करता है तपश्चरण की, तो अगले दिन ज्यादा खाता है और उपवास करने के बाद भी ज्यादा खाता है, क्योंकि उपवास कर लिया। शास्त्र में ऐसा विधान नहीं है उपवास का। शास्त्र में जिसको भोजन का राग मिटाने के लिए तपस्या करने का भाव आता है, उसको वैराग्य आगे पीछे बहुत रहता है। भोजन का वैराग्य आगे पीछे बहुत रहता है, तो बहुधा तो आगे का एक टंग को छोड़ देते हैं, जिसको अत्तरवाणा में बहुत खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं,
निकास नहीं करते हैं।
अगले दिन निकास ना करते हैं और पिछले दिन भी निकास ना करते हैं कि नहीं उपास पूरा हुआ तो जल्दी खा लूं और बहुत खा लूं और बहुत विधिवित खा लूं, ऐसा नहीं। अभी मेरा जो वैराग्य है वो छूटा नहीं, क्या वैराग्य छोड़ा नहीं जाता, छूटता नहीं है, तभी और एक टंग और छोड़ देंगे। फिर भी जो खाएंगे वो रूखा सूखा खाएंगे, कैसा
रूखा सूखा,
उसी का नाम उपवास है। ये तो बहुत खा ले आगे पीछे क्योंकि उपवास किया है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये तो परिणाम बिगाड़ने का धंधा है और कुछ
तो
नहीं है।
मन तो चलता है लेकिन खाते नहीं।
हाँ, मन तो रस तो भरा है खाने का और दमन करते हैं कि नहीं खाना, बस बिल्कुल नहीं खाना। आज उसने प्रत्याख्यान लिया है, बिल्कुल खाने का नहीं है, नहीं खाएगा। यही इसके परिणाम अशुभ चलने लग जाते हैं, शुभ परिणाम भी उसका नहीं रहता है और आगे पीछे तो बहुत रस वाला अशुभ हो जाता है। तो ये तपश्चरण नहीं है, तपश्चरण का एक खोटा आडंबर या फालतू नाटक है,
नुकसान है,
बहुत नुकसान होता है इससे। वहां राग छोड़ने के अर्थ क्यों, यही तो बताया क्यों कारण से भोजन आदि नहीं किया, कि राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। कौन? सम्यक दृष्टि। राग छोड़ने के अर्थ तो भोजन को छोड़ता है और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनशन आदि को करता है। जब अनशन होता है, उपवास होता है, तो उसको द्वेष नहीं होवे उसकी सावधानी रखता है। जबकि शरीर धर्म है, शरीर में ये अग्नि है ना, जठराग्नि, इससे वेदना आता है भूख का। जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो वेदन आएगा, तो उस वेदन के काल में संभाव से ज्ञाता भाव में रहने का पुरुषार्थ करेगा वो। अरे भूख लगी है लेकिन मैं नहीं खाया, खाने का नहीं है, वैसा परिणाम बिगाड़ते नहीं है। योग्यता वाले प्रतिकूलता में परिणाम कभी बिगाड़ते नहीं, योग्यता वाले तो प्रतिकूलता में और पुरुषार्थ बढ़ा करके अपने परिणाम की योग्यता और बढ़ा देते हैं, उसी के नाम योग्यता है। अगर ऐसा परिणाम बिगाड़े तो ये योग्यता नहीं है किंतु अयोग्यता है, ऐसी बात है। तो अनशन के काल में वो द्वेष को छोड़ता है, भोजन के काल में राग को छोड़ता है, भोजन को छोड़ता है या करता है तो भी राग छोड़ता है और द्वेष को भी छोड़ता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्टी सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। क्या? जब भोजन मिलता है तभी राग नहीं करता है, तो भी कभी भोजन नहीं मिलेगा उसको तो राग क्यों करेगा,
द्वेष नहीं करेगा।
जैसे कि रोग हुआ और डॉक्टर ने बोला कि आपको नहीं खाना है, तो वो तो परवस्था से उसको अनशन करना पड़ा। बोले कि अच्छी बात है, उसमें क्या है, भोजन मिलता है तभी हम तो उपवास करते हैं, तो आज तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बोलते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है। वैसे हमको तो भोजन करने में का राग छोड़ना ही है, और जिसको हमको करने का, जो कार्य हमको करने का है वो परवशता से आ पड़ा तो हमको द्वेष होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, अच्छा हुआ, ये हुआ तो अच्छा हुआ, क्या कहते हैं, रोग आया तो अच्छा हुआ। हाँ अच्छा हुआ, रोग आया तो भी
अच्छा हुआ,
अच्छा हुआ। दुनिया से उल्टी बात है। क्यों, वो स्ववस्था से उपवास किया तो क्या है कि स्ववस किया ने, भोजन तो मिलता है, घर में है, भरा है, फिर भी हमने छोड़ दिया। अब परवस्था से उपवास करने की बात आई, तो अगर स्ववस्था से ऐसा हमने आत्मा को ठीक नहीं, योग्यता नहीं बनाई होगी, हमें केड़व नहीं कैसे गुजरात में, आत्मा ने केड़वा नहीं हो तो रोग आवश्य त्यारे तो एने राग द्वेष थिया बिना नहीं रिये, और राग द्वेष हो जाए, अरे हमको तो खाने का नहीं मिलता है, देखो कैसा रोग आ गया, खाने का बंद हो गया हमारा, अरे खाने का बंद करने का ही है तुझे, तेरा आत्मा कहाँ खाता है, निराहारी अनाहारी पदार्थ हो तो
अच्छा हुआ रोग आ गया।
हाँ अच्छा हुआ वो आ गया, ऐसा ऐसा प्रसंग आया वो अच्छा हुआ, हमारी खान पान के राग को मिटाने के लिए ऐसा उदय आया है, तो हमारा तो प्रयोग का काल है, इससे हमें द्वेष होता नहीं है, ऐसी बात है। सुल्टा लेता है, उल्टा नहीं लेता है, सुल्टा लेता है। कुछ भी हो जाए,
प्रतिकूलता को अच्छा
मानता है, प्रतिकूलता में द्वेष करता नहीं है। यही कहते हैं कि जब स्वाधीनता से इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो तो फिर पराधीनता से, तो फिर अनशन आदि, तो फिर स्वाधीन पराधीनता से क्यों हुए, ऐसा साधन और पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष फिर नहीं होगा,
नहीं होगा,
क्योंकि स्वाधीनता में ऐसी योग्यता बना ली है, तो फिर ऐसा उदय पराधीनता से भोजन आदि छोड़ने का उदय आएगा तो उसको राग द्वेष होगा
नहीं।
ये डायबिटीज होता है ना, तो उसको शक्कर खाने की मना है, अच्छा मिठाई तो छोड़ने की चीज है, वैसे तंदुरुस्त लोग भी ऐसे होते हैं, चलो हम आजीवन मीठा नहीं खाएंगे, कोई भी मिठाई हम नहीं खाएंगे, ऐसे लोग हैं, नहीं खाते हैं मिठाई, उनको तो डायबिटीज होता, अरे रे मेरा मीठा खाने का बंद हो गया, अभी मिठाई खाने का मेरा बंद हो गया, उसको और राग बढ़ता है,
तो और बढ़ जाता है, वैसे नहीं है इतना, और बढ़ जाता है,
और बढ़ जाता है, और नहीं खाने का मिलता है तो द्वेष भी बढ़ जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं
छुपा छुपा खा गया
घर में नहीं मिले तो ऐसे खा ले, राग तीव्र हो जाता है तो क्या करें, तीव्र राग हो जाता है तो ऐसा भी होता है। हाँ नहीं खाते हैं, नहीं खाते थे अपने, वो आते हैं ना हैदराबाद से बहन आते हैं, बादाम बहन, वो बोला 20-25 साल से मैंने मिठाई नहीं खाई, पहले उसका दीक्षा लेने का भाव था तो मिठाई पहले छोड़ दिया था, दीक्षा लेनी है तो मिठाई भी नहीं खानी है, दीक्षा लेने के बाद भी मिठाई कोई उसको वरावता ना, स्थानकवासी थे तो स्थानकवासी में देरावासी में तो वरावते हैं अच्छी अच्छी चीजें, कि नहीं मिठाई नहीं खाना, संसार अवस्था में मिठाई छोड़ दिया, फिर दीक्षा नहीं लिया तो भी मिठाई तो छोड़ ही दिया, तो छोड़ ही दिया, खाया भी नहीं खाते 20-25 साल से नहीं खाते, हाँ उसको उसका मन होता ही नहीं है, तो ऐसा न हो क्या, राग द्वेष न हो, सो होना तो ऐसा ही चाहिए, राग द्वेष नहीं हो ऐसा ही होना चाहिए, परंतु तुझे अनशन आदि से द्वेष हुआ इसलिए उसे क्लेश ठहराया, तुम्हें अनशन पसंद नहीं है तो कहता है कि ऐसा क्लेश में हम क्यों पड़े, तपस्या करके क्लेश होता है, काय क्लेश क्यों करे, क्योंकि तुझे द्वेष हो गया है अनशन से और भोजन का राग है तुझे, जब ये क्लेश हुआ तो भोजन करना सुख स्वयं भी ठहरा। तो भोजन तुझे प्रिय लगेगा, अच्छा अच्छा भोजन और प्रिय लगेगा, और अच्छा भोजन सबसे भाने वाला भोजन आएगा तो पूरा पूरा डूब जाएगा, एक कवल में पूरा आत्मा बिक जाएगा तारा तेरा। हा क्या अच्छी चीज बनी है, पूरा आत्मा उसमें स्वाहा हो जाएगा। और वहां राग आया, सो ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई जाती है, अनादि से ऐसी संसार में परिणति तेरी हुई है और ऐसी परिणति तू करता है, क्या विशेषता हुई? इसमें तो कोई विशेषता नहीं है। तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? धर्म के क्षेत्र में आकर के तुझे ने राग द्वेष नहीं छोड़ा तो तूने किया क्या?
नहीं बात
है कि कुछ किया नहीं है। यदि तू कहेगा कि कितने सम्यक दृष्टि भी तपस्रण नहीं करते हैं इसलिए मैं भी नहीं करता हूं, आधार लेंगे तो ऐसा लेंगे, सम्यक दृष्टि को तो चक्रवर्ती का वैभव होता है, मेरे पास तो गुदड़ी है, ये कोई आधार लेने की चीज
नहीं है। वो मंदिर नहीं जाते मैं भी नहीं जाऊंगा,
हाँ वो मंदिर नहीं जाते मैं भी नहीं जाऊंगा, वो शास्त्र नहीं पढ़ते मैं भी नहीं पढ़ूंगा, ये भोग भोग में रहते मैं भी रहूंगा। तो ये सम्यक दृष्टि का स्वरूप अपना विषय कषाय पोषण करने के लिए बताया है, नहीं है ऐसी बात है।
भरत चक्रवर्ती वोट लेता है,
हाँ लेता है ना भरत चक्रवर्ती का, ये अवलंबन लेने के लिए नहीं कहा, इनका श्रद्धा ज्ञान की दृढ़ता ठोसता बताने के लिए वो बात कही थी, पर उसने वो बात तो समझी नहीं और अपने विषय कषाय की रुचि को पोषण करने लगा, तो इसने शास्त्र पढ़ करके शास्त्र बनाया, शास्त्र को शास्त्र बनाया। सोने की छुरी भेंट में अच्छी लगती है, पेट में लगावे तो मर जाए, ऐसी बात हो गई,
ऐसे ही किया।
हाँ ऐसा होता है, इसलिए सब खुलासा करते हैं पंडित जी, शास्त्र इसलिए लिखा है यहाँ तक
भगवान। जय हो परम कृपालु श्री कान गुरुदेव, पवित्राग दिगंबर जैन धर्मनो, जय हो जय हो।